ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ। ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹਨੂਜ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਸਤ, ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਬੋਲ, ਮੰਤਰ ਵਾਕ, ਮੰਤਰ ਆਵਾਜ਼, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੰਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਉਂਡੇਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਰਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਭਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਦਾਗਾ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੰਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਂਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ, ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, मैं खुद सी। हुण मेरे कर्म दे च, हुण मेरे विचार दे च, हुण मेरे बोलां च मैं नहीं तू ही है। हुण ते मैं मिट गया। धर्म दी ध्यान साधना है अपने आप नूं मिटाना, और जितना मनुख मिटदा है उतना ही परमात्मा प्रगट आउंदा है। इंज कह लो कोई 10% अपने आप नूं मिटाण दे सफल होया है, तो उस मनुख दी जिंदगी 10% परमात्मा प्रगट होया है। इंज कह लो कुछ प्रकाश प्रगट होया है, कुछ रस प्रगट होया है। ते जिसने अपने आप नूं अद्धा मिटा दिता है, बहुत कुछ मिटा दिता है, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं मिटिया, सतो गुणी कम से कम अपने आप नूं अद्धा ते मिटा देंदा है। रजो गुणी तमो गुणी ये पूर्ण तौर ते अपने आप नूं ही प्रगट करदे ने। इंज कह लो इन्हां दी दुनिया च रब नहीं आउंदा, रब मिटिया आउंदा है। या जीवन दे च कहिंदे ने खुद नूं मिटाओ या परमात्मा नूं मिटाओ। नास्तिक किस नूं कहिंदे ने? मेरी कोई आस्था नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और ईश्वर लई मेरे कोल कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, है ही नहीं। इसने अपने आप नूं इतना उजागर कीता है अपने कर्म दे राही, अपने व्यवहार दे राही, अपने विचार दे राही, अपने बोलां राही, परमात्मा नहीं है। और एक ऐसी अवस्था बनती है साधना करने वाले दी, भगति करने वाले दी, नाम जपण वाले दी, मिट जांदा है उसकी जात पात कुल, उसका संग्रह कीता ज्ञान, उसकी अपनी होंद, उसके अपने विचार। हुण विचारां विच भी परमात्मा है, व्यवहार विच भी परमात्मा है, कर्मां विच भी परमात्मा है, बोलां विच भी परमात्मा है। हुण मैं अर्ज करा मनुख जिहड़ा बाहर प्रगट आउंदा है करीबन करीबन 90% बोलां राही, तो कदी जगत भर दे बोल पढ़न की कोशिश करना, बोल विच मनुख की जात प्रगट हो रही है, पात प्रगट हो रही है, उदे गुण प्रगट हो रहे ने, औगुण प्रगट हो रहे ने, उसका व्यवहार प्रगट हो रहा है, उसके विचार प्रगट हो रहे ने, उसका आचार प्रगट हो रहा है बोलां दे राही। कदी कदाई ऐसे बोल आउंदे ने जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां कि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने, ये मनुख दे नहीं हो सकते। और जद किधरे परमात्मा किसी दे अंदरों बोल पैंदा है, उस हालत विच जद अपना आप खामोश हो जाता है। इस वास्ते सिख जगत ने, गुरमत ने जोर लाया स्रोता बनन ते। दो मनुख आमने सामने बैठे हुण ते दोवें कठे बोलन, तो दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पएगा, कुछ भी नहीं पएगा, क्योंकि दोवें कठे बोलदे पए ने। एक चुप करे, एक बोले, तां कुछ जो है पल्ले पै सकदा। तो ठाकर हमरा सद बोलंदा, परमात्मा सदा बोल रहा है, उसकी आवाज सदा ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। यह नहीं कि सवेरे बोलदा है ते शाम नूं नहीं, दोपहरी बोलदा है ते रात नूं नहीं, हर वक्त वह बोल गूंज रहा है। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि असी भी बोल रहे हैं, असी नहीं चुप करते। एक चुप करे, दोवें वक्ते बने हुए ने, परमात्मा भी वक्ता बने हुए, असी भी वक्ते। धर्म की सारी साधना है अपने आप नूं चुप कराण दी, खामोश कराण दी। ये मौन धारण की जिहड़ी प्रक्रिया चली सी, ते बाहरों चली सी, मन नूं चुप कराना है, मन बोलदा है। जिस दिन मन चुप करदा है उसे दिन परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले इस तरह दे मनुख दे कोल अपने बोल होणगे, क्योंकि मन जो बोलदा पे है, चाहे वह धर्म दे बोल पे आ बोले, चाहे वह परमात्मा दे भी बोल पे आ बोले, मैं फिर अर्ज करा फिर भी वह परमात्मा दे बोल नहीं ने। मैं सीमा रखदा क्योंकि पता नहीं हाजमे हर एक दे अलग अलग ने, गल पचदी है कि नहीं। भावे परमात्मा की कथा हो रही है, अगर मन ही बोल रहा है तो खिमा करनी, उस मनुख की ही कथा हो रही है, वही अपना अनुभव कह रहा है और कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं है। ये सब उपरों ही उपरों लीपा पोती है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेशी ए जग सगलो धंधा, गुरु अमरदास। जगत विच बड़िया कथा कहानियां चल रही ने, एक धंधा है गुरु अमरदास, एक व्यवहार है, एक रोजमर्रा की उन्हां दी जिंदगी बन गई है, कहना है। गुरु अमरदास जी महाराज दे ना बोलां नूं मैं कई दिन सोचता रहा। गुणी ज्ञानी बहु उपदेशी, बड़ा उपदेश चल रहा है सारी दुनिया च। महाराज कह रहे ने धर्म नहीं है, चाहे उपदेश मस्जिद दे चल रहा है, मंदिर दे चल रहा है, गुरुद्वारे च चल रहा है, धर्म नहीं है। तो महाराज फिर एक ही है, ए जग सगलो धंधा, धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। धर्म ते उदों हुंदा है जद किसी दे अंदरों रब बोले, परमात्मा ही बोले, पर धर्म पे आ बोले। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। धर्म की है सच, ते सच सच चो ही निकल सकदा, इस झूठे शरीर तो नहीं निकल सकदा, इस झूठे मन तो नहीं निकल सकदा। इतने मैर्ज करते हैं, वो ते आत्मा तो निकलेगा, वो सच स्वरूप है। इस वास्ते इस तरह के पुरुषां ने जिन्हां दे अंदरों ये बोल प्रगट होए, उन्होंने कह दिता ये बोल साढ़े नहीं ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अनुमान इस तरह लिखते ने, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। मैं कीड़े नो, कीट कहिंदे ने कीड़े नो, मैं छोटे जिहा कीड़े नो परमात्मा ने एक सास की तरह इस्तेमाल किया है, ये बोल उस दे ने। अकाल पुरख वाच, ये ते प्रभु दे वचन ने। ये जो मेरे मैं कीट दे राही प्रगट हो रहे ने, ये कीड़े दे शब्द नहीं ने, ये कीड़े दे बोल नहीं ने। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभु मो सो कहा, सो कहो जगमाए। जगत जो सुन रहे है, ये ते प्रभु दे बोल ने। और गुरु नानक ते इत्थे तक कहंदे ने, हो आपो बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो, मैनू कहना ही नहीं आउंदा, मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, मैं बोल ही नहीं सकदा, मैनू कहना ही नहीं आउंदा। फिर इतनी बाणी तुसी आखी है, इतने बोल तुसी आखे ने, हजारां शब्द ने। महाराज कहिंदे नहीं, इह ते खसम दे बोल ने, अपने है ने, आपां ते कदों दे चुप कर गए। जिस दिन मनुख चुप करदा है, समझदे ते इह 5000 साल पहले ही गल आ गई सी कि धर्म दी साधना की, अपने आप नूं चुप कराना। तो एकदम चुप कराना बड़ा औखा सी, तो मौन धारण दी प्रक्रिया चली, भी पहले बोलो ही ना, जबान ना बोले, शायद एक दिन फिर मन भी चुप कर जाए। पर मैं करा इस दी सफलता हो सकदा किधरे हजारां दे चों एक कद मनुख नूं लभी होवे, कोई सफलता मिलदी नहीं। इस वास्ते गुरु नानक सहमत भी नहीं होए, चुपे चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार। लगातार एक लिवतार जे चुप कर जाइए, मौन धारण कर जाइए, ता भी मन चुप नहीं करदा। मन चुप करे ते परमात्मा दी आवाज सुनाई देवे, मन ने ते अपना रोला पाया होया बड़ा जोरदार। आप इतने सारे सज्जन बैठे हो ना, एक गल ते मैं अपने अनुभव के आधार ते दावे नाल कह सकदा, गुस्ताखी माफ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰੋਤਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ? ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਆਚਾਰ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਕੋ ਥਾਟ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਵੇ ਨਿਕਸੇ ਮੁਖ ਕੀ ਵਾਟ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 100% 100% ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੀਸਰਾ ਲੋਚਨ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਈਸਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫੌਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਈ ਰਾ ਚੂੰ ਬਦਰ ਕਰਦਮ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਯਕੇ ਦੀਦਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਈ ਰਾ ਚੂੰ ਬਦਰ ਕਰਦਮ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਯਕੇ ਦੀਦਮ, ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ ਮੌਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੌਨੀ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਤਨੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਰਥਿਕ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ 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 ਜਿਸ ਬਾਰੀਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਕਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਣੂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦਿਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈਨਸਟੀਨ ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹਿਰ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਲਮਕਾਵਾਂ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਅਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ, ਇੱਕ ਧਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਖੋਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਪੀੜਾ ਤੜਪਾਏਗੀ, ਪੀੜਾ ਰੁਲਾਏਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਾਂ, ਪੀੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਏ, ਇਸਤਰੀ ਛੇਤੀ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪੁਰਸ਼ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਕੜੇ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਸੀ, रो पईयां, हंजुआं दे राहीं पीड़ा निकल गई, मन हौला हो गया, हल्का हो गया। पागल होने की घट संभावना रहती है। रोज रोज पुरुष हंजू पींदा जा रहा है, शर्म दबा रहा, क्यों? अगर रोवे कहने की जनानिया की तरह रो रहा है, पर कौन दसे? अखां विच दोहां दे परमात्मा ने हंजू पाए ने, उसे तरह दी पाए ने। एक भावना दे वेग विच आके पीड़ा विच, ते पीड़ा विछोड़े दी आउंदी है। कुछ भी होवे, धन दा विछोड़ा, परिवार दा विछोड़ा, वतन दा विछोड़ा, सेहत दा विछोड़ा, इज्जत मान मर्यादा दा विछोड़ा, कुछ भी बिछड़े पीड़ा है, ते पीड़ा रुलांदी है। स्त्री रो लैंदी है, पुरुष हंजू पी लैंदा है। इस दे कुल हंजू बहुत कट्ठे हो जांदे ने अंदर, एक दिन पागल हो जांदा है। पागलपन दा मतलब की है? इन्हें सारे ही हंजू अंदर जज़ब कर लाए। भगत भी रो पेंदे ने, इन्हों को बड़ा वड्डा विछोड़ा है परमात्मा दा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। हे हंजू पता नहीं कितने जन्मां दे पापां नूं धो के परे सुट देंदे ने। कितनी दफा जपजी साहब पढ़िया सी, कितना दान कीता सी, कितनी सेवा कीती सी, हिरदे दे गुबार नहीं धुले सन, गुनाह नहीं धुले सन। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे आया, वाहिगुरु दा विछोड़ा महसूस होया, चीख निकल गई, रुदन निकल पिया, धुल गए गुनाह, धुल गए पाप। लखां करोड़ां दे दान ने गुनाह नहीं धोए सन, पता नहीं कितने जप तप ने पाप नहीं धोते सन, पाप धुल गए ने। इहदी पहचान किस तरह होवेगी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। अगर कीते हुए पाप चेते आ रहे ने, नहीं धुले, मौजूद ने, अज अंदर पए ने, ताई ते याद आ रहे ने। कीतियों या गलतियां नहीं मिटियां, सबूत की है, अगर याद आ रही हैं तो नहीं मिटियां। अगर गुनाह कीते हुए याद आ रहे हैं तो नहीं धुले, मौजूद ने, अजे नहीं मिटे। जिस दिन रब्बी विछोड़े दी पीड़ा मनुख नूं तड़पांदी है, और उसे तड़पण दे च ए हंजो निकलदे ने, ए गुनाह धुल जांदे ने, मन हौला हो जांदा है, हल्का हो जांदा है। पानी जैसे बार सारी धुलाई दे कम दे चसी वरतदे आं, यकीन जानो हिरदे दी धुलाई इस तरह हुंदी है। बशर्ते परमात्मा दे छोड़े च ए हंजो निकलन। पदार्थां दे विछोड़े च ए निकले ने, पागलपणे तो बच जाएगा, नहीं होवेगा, हिरदा फिर भी हौला हो जाएगा। पर हंजू पींदा गया, पींदा गया, परिवार बिछड़े, हंजू पी लए ने। मेरे सामने पता नहीं कितनिया ने आख्या, देखो भरा दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं, पुत्र दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं। मैं कि झूठा माण दे रहा सी, गलत माण दे रहे हैं। शायद रो लैंदा तो इसके अंदर इतना गुबार नहीं होना सी। तो मैं फिर अर्ज करा, छोटी जी पीड़ा, छोटा जहा विछोड़ा स्त्री नूं छेती रुला देंदा है, पागलपणे तो बच जांदी है। पुरुष हंजू पी लैंदा है, तनाव ग्रस्त रहिंदा है। भगत दे अंदरों भी एक रोना निकलदा है, वो है परमात्मा दा विछोड़ा। ओ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, मैं रोन रुवंदी सब जग रुन्ना, रुन्ने वनो पंखेरु, इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। अखां ते मेरियां भी रो पईयां गुरु नानक, ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੋਨਾ, ਰੋਣੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ। ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਧਰ ਵਿਛੋੜਾ ਰੋਇਆ, ਇਧਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨ ਹੋਂ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਤੋ ਖੈਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੋਨਾ, ਰੋਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨ ਹੋਂ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਲਮਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਸ਼ਾਹੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਜ ਸਮਰ ਨਗੀਰਤ। ਐ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੂੰ ਆਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੈਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗੀਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗੀਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਹੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਸ ਸਮਰ ਨਗੀਰਤ। ਫਲ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰ ਫਲ। ਹਰਗਿਸ ਸਮਰ ਨਗੀਰਤ, ਸਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ, ਅਜ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਜਗਾਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸਤਰ ਨ ਬਾਸ਼ਦ। ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ? ਅਜ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਜਗਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਜਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਜਗਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਤਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਰੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਤੜਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। और सब समझ जाती है। भुख है, इन्हू दूध पिलाना है, कोई लोड़ है, कोई तकलीफ है। बच्चे दे रोने नो जे मां जानदी नहीं, समझदी नहीं, शायद मां होण दा माण फिर इसदे कोल नहीं है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। मनोविज्ञानिक तो इतना कहते ने कि तूफान आया होवे, बदल गरजदे पए होवन, जोर दी बारिश दी आवाज होवे, बार बड़ी खड़ाक होवे, मां दी अख नहीं खुलदी, पर मध्यम जई आवाज दिच मासूम बच्चा किधरे रो पिया, अख खुल जांदी। अचेतन दिच किधरे इसका ध्यान बच्चे दी तरफ है, वरना बदलां दी गरजत ने इस दी अख नहीं खोली। पवन दी शां शां करके, बार दे खड़ाक करके इसकी अख नहीं खुली। मध्यम जी आवाज दे बच्चा रोया है, अख खुल गई है। ते जे मां दे कोल अचेतन मन दिच भी इतनी स्याणप है ते रब ते बड़ा स्याण है, रोना सुन लैंदा है। नहीं तेरे कोल कोई मंजे होए शब्द, जिस दिन रब दा विछोड़ा उस दे मंत्र दे जाप दे राही महसूस होंदा है, हिरदा रो पैंदा है, प्रभु समझ जांदा है, इसे नू समझदा है। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इसका बड़ा भारी जिक्र है। और बाबे फरीद ने ते अपने सारे सलोकां विच इंज कह लई है, खुदा दे अगो अपना रोना ही रख दिता है, कोई होर मैनू कुछ नहीं आंदा। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण ले, ए हमारा जीवना तू साहेब सच्चे वेख। वेख लब साडे कोल ही है, असी इस तरह जी रहे हैं, असी इस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, ठाकुर हमरा सदबोलंता, सदा बोल रहे है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मन भी सदा बोल रहे है, तो दो कट्ठे बोलन तो फिर सुने कौन? साडे बोल अगर प्रभु नूं चुप करा देन तो फिर असी प्रगट हो गए, गुस्ताखी माफ, परमात्मा खत्म हो गया। ध्यान नाल सरवण करना, परमात्मा दे बोल सानू चुप करा देन तो असी मिट गए, परमात्मा प्रगट हो गए। या ते मनुख दी जिंदगी च परमात्मा मिटिया होया रहेगा, भावे जगत दे च है, या फिर परमात्मा दी दृष्टि च समूह ब्रह्मंड दे च मनुख मिट जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा। भगत कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बय हैं, कोई न सके पछानी। कबीर मिट गया, कबीर एक बूंद सी खत्म हो गया, राम एक सागर सी वो बूंद सागर हो गई है, हुण कबीर नहीं है, हुण राम है। या ते मैं हां या फिर तू है, जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। तो परमात्मा वक्ता है, ऐसा वक्ता है, हर वक्त उसके बोल गूंज रहे ने। उसी बोल नूं आख्या गया ब्रह्म मंत्र, गुरु मंत्र, ईश्वर दा बोल, ईश्वरी मंत्र। प्राचीन सनातनी ऋषियां दी पकड़ दे च ए मंत्र जो आया, वो कहिंदे ने ओम है, ओम ब्रह्मंड दी धुनी है, हर वक्त चल रही है। जैसे सनातनी ऋषि कहते ने, मन साडा चुप कीता, सानू प्रभु दी आवाज सुनाई दित्ती, अनाहद नाद सुनिया। धर्म दी सारी साधना है अपने मन नू चुप कराण दी। जब जपजी साहब पढ़ रहे हो वो ना, तो भाव ए पैदा करो कि परमात्मा बोल रहा है। मैं कल अर्ज की थी, जरा दोहरा दें, कुछ नवे सज्जन आ जाते हैं, परमात्मा दे बोल जो सीधा पकड़ लवे वह अवतार है, गुरु है। ते परमात्मा दे बोल जो गुरु दे राही प्रगट जो है पकड़ लवे वह सिख है, गुरुमुख है, भगत है, संत है। सीधे अपने आप नूं खामोश करके बिना किसी वसीले तो ते परमात्मा दे बोलां नूं पकड़ लेना, सुन लेना, हर एक दी तौफीक नहीं है। जिस समय कल अर्ज कीती सी, हर मनुख चित्रकार नहीं आउंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं है, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं है, हर मनुख संत भी नहीं है, पर हां हर मनुख दा भविष्य संत जरूर हो सकता है, आज नहीं ते कल होवेगा, इस जन्म दे च नहीं ते अगले जन्म दे च होवेगा। संत होए बिना ते छुटकारा नहीं, गुरुमुख होए बिना ते छुटकारा नहीं, ब्रह्मज्ञानी होए बिना ते छुटकारा नहीं। जो सीधा इना बोलां नूं प्रगट पकड़ लैंदा है, जो ब्रह्मंड दे च हर वक्त गूंज रहे ने, ठाकुर हमारा सदबोल अंता अवतार ने, ये पैगंबर ने, ये गुरु ने, पर पैगंबरां दे राही गुरुआं दे राही जो बोल नूं पकड़ लैंदा है, ते पकड़ना की है, खुद चुप कर गया हुण सुनदा है, हुण गुरु नूं ही सुनदा है, हुण गुरबाणी सुनदा है। जब जपजी साहब पढ़ रहा है तो बस जपजी सुन रहा है, इहदा अपना मन नहीं बोल रहा। जब सुखमनी साहब पढ़ रहा है तो बस गुरु ही बोल रहा है, इसका अपना मन नहीं बोल रहा। पर कदी देखना सुखमनी साहब दे राही परमात्मा बोल रहा है, साडा अपना मन भी बोल रहा है। आसा दीवार दे राही जपजी साहब दे राही प्रभु बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, पर साडा अपना मन भी बोल रहा है। ते दोवां दे बोल कठे चल रहे ने और आमने सामने चल रहे ने, तो सुने कौन? या ते परमात्मा नूं कहिए तू चुप कर, मैनू सुन। जिस दी आवाज मिट जाए वो मिट गया। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते। इस देही दे जो बोलन वाला सी किथे गया? मनुख ते प्रगटे बोलां दे राही, देही ते पईए मुर्दे दी, बोल खत्म हो गए, बोल नहीं है। बोल दे राही ते इसने प्रगट होना सी, बोलना खत्म। परमात्मा चुप कर गया तो परमात्मा मिट गया। गुस्ताखी माफ, तेरे बोल परमात्मा नु चुप करा देन तो तेरे बोल बड़े वजनी ने, तेरे बोल बड़े महान ने। रब चुप कर गए, मिट गए, पर परमात्मा दे बोल तेनू चुप करा देन तो फिर तू मिट जाएगा। इस वास्ते हर मनुख कोशिश करदा ना सुनिए, ना सुनिए, मिट जावांगे, मिट जावांगे, खत्म हो जावांगे। ये मिटना जिसनों पहले कबूल होवे, महाराज गुरु नानक देव जी दे कहंदे ना, ओही मेरे को लावे, पहला मरण कबूल। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मरदे दम तक भी जीवन दी लालसा बनी हुई है तो मरिया कौन है? जे नहीं मरिया, वासना बद्दा आवे जाए, फिर जमेगा, फिर जमेगा। टोटल मौत उसे दी आउंदी है, पूर्ण मौत उसे दी आउंदी है जिसका मन मर गया। और जैसे पूर्ण मौत आउंदी है इनू पूर्ण जिंदगी मिल जाती है, ऐसी जिंदगी जिस विच मौत है ही नहीं, मुए बिन जीवन नाई। उस मौत तो बिना जिंदगी किथे, उस मौत तो बिना जीवन किथे। धर्म दी साधना है अपने मन नू मारन दी, ते मन मर गया पहचान की होवेगी, हुण नहीं बोलदा, हुण सुनदा है, हुण इसनू अनाहद नाद सुनाई देण लगता है। कदी कदी थोड़ा जिहा मुगालता भी हो जांदा है, वक्ती तौर ते आरजी तौर ते थोड़ी जिहा मन दी खामोशी हो जांदी है, उस दिन कुछ रस दी झरनाहट मनुख दे अंदर वज पैंदी है, कुछ झलक भी दिखाई दे जांदी है। इस तरह मैं समझदा अगर कोई हजार बंदे साधना कर दे अवन तो 50-60 दे अंदर ते ए झलक हो जांदी है, क्योंकि ऐसा मैं देखदा हर शहर विच कुछ इस तरह दे बंदे ने जो इन्हां झलकां नूं वेख लैंदे ने, लेकिन मन मरिया नहीं आउंदा, मन मौजूद है। थोड़ा जिहा वक्ती तौर ते किधरे खामोश होया है, मरिया नहीं। इन्हों तुलसी इंज कहंदे ने, मैं जानियो मन मर गयो, किधरे रस आ गया होना, कोई झरनाट वज गई होनी, कोई आनंद दी वर्षा हो गई होनी है, ये हो जाती है, ये उसकी दया है प्रभु की, इस तरह की झलक मिल जाती है। मैं जानियो मन मर गयो, अज हूं सो मरियो ना है, बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों बिरड़ा है। आम भारत विच ते इस तरह का इत्थे तो मैनु पता ने, जैसे सावण का महीना शुरू होंदा है, बरसात शुरू होंदी है, चारों पासे डडुआं दी आवाज सुनाई देंदी है, अगे पिछे नहीं, हैरानगी होंदी है ये एक दिन विच कित्थों आ गए, अज मीं पिया ते अज ही डड्डू पे बोल देना, ये एक दिन विच किस तरह आ गए, कित्थों आ गए। कुछ एक ते कहिंदे ने जमीन दे विच सन, मीं पिया, कुछ कुदरत ने इसनु इस तरह का बनाया है, काफी लंबे समय तक रह सकता है इस तरह दबे होया चिक्कड़ विच, सरोवरां विच जिथे पानी सुक गए ने, इधर मीह पिया, इधर पानी उपर आया, इसनु बाहर आण दा मौका मिल गया, बोलन लग पिया, दादर ज्यों बिरड़ा है। तुलसी कहंदे मैं समझदा सी मन मेरा मर गया, अज मैं प्रभु दी आवाज सुनी, अज मैं परमात्मा दी झलक वेखी, इधर मैं खुशियां मनाण लग पिया, हंकार दी बरखा हो गई, मन फिर बोलन लग पिया, मेंढक दी तरह बोलन लग पिया, डड्डू दी तरह बोलन लग पिया, कुसंगत दी बारिश हो गई, हंकार दी बारिश हो गई, मैनु इस गल दा भी हंकार हो गया कि मैं परमात्मा नु सुन लिया, मैं उसकी झलक वेख ली। अमीर खुसरो ने भी रोंदे आया कहा, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक झलक भी मिली सी, मैं गवाह बैठा, वो जड़ी आवाज सी जो मैं सुनी सी, बस उसका बोध है मेरे कोल के मैं की सुनिया सी, उसका बोध है, उसनों मैं जबान नाल प्रगट कर सकदा। की सुनिया सी, खदीजा ने मोहम्मद साहब नू कहा, तो रसना बोल पई अल्लाहू अल्लाहू, यही बोली गए, यही बोलेगा, ब्रह्मंड दी धुनी है मेरे पकड़ दे चाई, उन्होंने इस तरह पकड़ दे चाई। भारत दे तमाम ऋषि कहंदे ने, ओंकार ओंकार ओम ओम, सारे क्या जैनी क्या बौद्धी क्या सनातनी, ओंकार शब्द भारत विच सांझा है, सिख जगत दा, सनातनी जगत दा, जैन मत दा, बौद्ध मत दा, एक शब्द सांझा है। सारे महापुरुषां दी पकड़ विच आया ओंकार, थोड़े जिहानू ओम दे रूप विच। ते मैं शायद पहले भी अर्ज की थी, भारत विच एक बहुत वड्डा तीरथ है, तीरथ दा नाम ओंकार है, इंदौर तो 40 मील की दूरी ते। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे एक बाणी उचारण की थी, उसका नाम भी दक्षिणी ओंकार है, रामकली दक्षिणी बाणी का नाम ओंकार। ओंकार एक ध्वनि जिसके राही परमात्मा प्रगट होता है, पकड़ देच आया अवतारी पुरुषां दी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ कन स्रोत शक्ति ऐसी है, आपनो ओंकार दे नाल कुछ होर ध्वनि भी सुनाई दित्ती, एक ओंकार, एक ओंकार इतना वादा गुरमत विच है, सनातन मत विच नहीं, जैन मत विच नहीं, बौद्ध मत विच नहीं। पता नहीं कितने सनातनी विद्वाना ने मेरे को पूछे ये एक क्यों लाया है। ब्रह्मांड की धुनी ते ओंकार है। पता नहीं कितने जैनिया ने कहा भाई महावीर दी पकड़ दे चाया ओंकार ये एक की है, ये क्यों लाया है। गुरु नानक इस दे राही की संकेत देना चाहते ने। और मैं अर्ज करा बोधियां दी पकड़ दे च भी यही आया है, एक ओंकार व्याख्या। तो मैं अज ओंकार दी थोड़े सामने करनी सी। ओंकार बारे संस्कृत ग्रामर दे ज्ञानी कहंदे ने ये तीन शब्दां दा जोड़ है, आकार मकार ओकार, उत्पत्ति पालना नाश। इस एक शब्द नू इस तरह त्रोड़े है या इंज कहो तिन्ना नू जोड़े है, इंज कह लो। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, पदार्थ नू तोड़दिया तोड़दिया विज्ञान पहुंचे परमाणु तक। अपने मन नू मिटांदिया मिटांदिया तोड़दिया तोड़दिया एक साधक पहुंचे परमात्मा तक। विज्ञान ने कह दिता परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, एक संत ने कह दिता परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं, वो मूल है, वो बुनियाद है, वो ध्येय है, वो आधार है, वो मूल है। तो फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जेडे पहले बचन आखे जेदे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, इनू आख्या गया मूल मंत्र। मंत्र बोल, बुनियादी बोल, पहले बोल, बुनियादी बोल। कोई भी मकान तामीर करना है तो बुनियाद पहले, छत बाद देच। मूल मंत्र बुनियादी बोल, ते बुनियादी बोल सतगुरु दा आरंभ होंदा है एक ओंकार। आकार उकार मकार, उत्पत्ति पालना नाश। जीव आ रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। ब्रह्मंड आ रहे है, ब्रह्मंड टिक रहे है, ब्रह्मंड मिट रहे है। सूरज चंद तारे आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। आवना टिकना मिटना ये तीन क्रियावां चल रही ने जगत देच। ये तीन कम हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं, हर वक्त कुछ नवे तो नवा आ रहे है। कोई सूरज, कोई चंद्रमा, कोई तारा, कोई मनुख, कोई पक्षी, कोई वनस्पति, हर वक्त इतना नवा आ रहा है जितनी गिनती नहीं हो सकती। और धर्म ते ये कह रहे है जो कुछ भी आ रहा है नवा ही आ रहा है, पुराना नहीं है। परमात्मा दे इस तरीके की कोई रेपीटेशन नहीं है कि जेड़ा पहले एक मनुख बनाया है तो उस तरह का फिर बनावे, जैसे पहले एक सूरज बनाया है तो उस तरह का फिर सूरज बनावे, नहीं। नवे सूरज आवदे ने, कई कोट ससी अर सूर ने कत्र, कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है। तो सूरज रुखसत हो रहे ने, मिट रहे ने, पर सूरज आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। जीव आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। वनस्पति आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। गुप्त दुनिया भी आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। ये तीन क्रियावां चल रही ने। ओम दी ध्वनि विच ये तीन क्रियावां दिस पईआं विद्वानां नूं जिन्हां दी पकड़ विच ये ध्वनि आई। ये तीन कम हो रहे ने इसे ही ओंकार विच, आवना टिकना मिटना। अगां चल के जद समा बहुत लंघ गया ते महापुरुषां दे ए बोल जो उन्होंने सिद्धे परमात्मा तो पकड़े सन, ब्रह्मंड दे चों सिद्धे पकड़े सन अवतारी पुरुषां ने, समय दा अंतराल वध गया, अभ्यास घट गया, गहराई घट गई तो फिर कहिंदे ने अर्थां दा अनर्थ हो जांदा है, विश्वास अंधविश्वास हो जांदा है। पहले जो विश्वास हुंदा है वो अंधविश्वास हो जांदा है। इस नूं साडे देश दे हो गुजरे एक राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा सी, कृष्ण दे कंठ तों जो कुरुक्षेत्र दे च गीता निकली सी, एक विश्वास सी कृष्ण दा, अज अंधविश्वास है। गया दे च बोड़ दे दरखत दे थले जो महात्मा बुद्ध दे कंठ तो बोल निकले सन, विश्वास सी, अज अंधविश्वास ते खड़ा है बोध जगत। ये भी मैर्ज कर दे उपनिषदां दे ऋषियां दे कंठ तो जो पहले बोल निकले सन ओ उन्हां दा विश्वास सी, अज अंधविश्वास है। वो जो बोल निकले सन उन्हां दा अनुभव सी, अज अंधविश्वास। अपना मन ते चुप कीता ने ते विश्वास बनाया होया ये बोल परमात्मा दे ने, परमात्मा दे तू उदो ही सुन सकेगा, तेरा मन उदो ही सुनेगा जब तेरा मन चुप करेगा, और उस दिन तेनू पता चलेगा कि वाकई ये हुण मेरा भरोसा है, हुण मेरा विश्वास है। इस तरह दे विश्वास नू कोई थड़का नहीं सकता। बड़िया दे मैं देखदा कहिंदे पहले ते साडा बड़ा भरोसा सी, हुण नहीं। ते मैं उहनां नू कहिंदा उहनां पहले नहीं सी भरोसा, तुहानूं भुलेखा है, नहीं सी, ये थोड़ा गलत कहना है, अंधविश्वास सी वो टूट गया होगा, भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होंदा तो संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े हो तो शीतलता न तजंत। करोड़ा दोखे मिल जान, दुष्ट मिल जान, मूर्ख मिल जान, असंत मिल जान, संत अपना विश्वास नहीं तोड़ता, वो दृढ़, क्योंकि उसका अनुभव उसने देखे है। हजारा अंधे कह देन सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, दिन नहीं है, पर सुजाखे ने हजारा अंधिया नू ठुकरा देना है सूरज, है सूरज, है सूरज, कहंदे रहो तुसी, असी नहीं सुनते। पर अंधिया की गल सुन के जिसने कह दिता है शायद नहीं है सूरज, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये भी अंधा है, वरना इस तरह कह नहीं सकता सी। अंधे लोगां दियां गल्लां सुन सुन के अंधियां दे विश्वास टुट जांदे ने, गुस्ताखी माफ। जिस दियां अखां बन ते फिर उस दे विश्वास टुट जान कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। पता नहीं कितनियां दे विश्वास मैं रोज टुटदियां देखदा, कल विश्वास सी अज नहीं। ते जद कहिंदे ने साडा भरोसा टुट गया ते मैं उन्हां नूं कहिंदा कल भी विश्वास नहीं सी, अंधविश्वास सी। पहले मन चुप नहीं कीता सी, भरोसा कीता सी, हुण भी मन ने चुप नहीं कीता ते इनकार कर रहे हो, उस वक्त भरोसा थोड़ा अंधविश्वास सी, अज थोड़ा इनकार भी अंधविश्वास, क्योंकि इसकी भी थोनू कोई समझ नहीं। शायद आपकी पकड़ विच गल आई होगी। बहुतियां दा आस्तिक होना भी अंधविश्वास है, बहुतियां दा नास्तिक होना भी अंधविश्वास। पता तो कुछ भी नहीं और कह दिता शायद परमात्मा नहीं है, नहीं है, पर पता कुछ भी नहीं, अंधविश्वास। एक आस्तिक है कहिंदा साडा भरोसा है, मन ते चुप नहीं कीता, भरोसा है, भरोसा नहीं है, अंधविश्वास है। तदी ते टुटदे हुए भरोसे दिखाई देंदे ने, निक्की निक्की गल तो लोगां दे भरोसे टुटदे दिखाई देंदे पए ने, रोज दिखाई देंदे पए ने। तो ओ जिहड़ी धुनी है ओहंकार, उहदे च तिन क्रियावां महापुरशां नूं दिखाई दित्तियां, उसकी व्याख्या जिवें गुरु नानक देव जी महाराज करदे ने मैं कल थोड़े सामने रखांगा। क्योंकि मूल मंत्र मैं छेड़ बैठा जरूर, बुनियादी मंत्र, पहला मंत्र जिस दे गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी खड़ी है, ये मूल है। ते अगर ये मूल है तो बड़ी गहरी गल होवेगी, तो अगर गहरी गल है तो मैं ऐसी ते उम्मीद नहीं रखता कि उन्हों कोई एक फीसदी भी बयान किया जा सके। हां सागर दे चों एक चम्मच पानी दी लियान दे च अगर सफल हो गए तो यह भी गुरु नानक दा धन्यवाद, यह भी अकाल पुरख दा धन्यवाद। चलो तेरे सागर दे चों एक चम्मच पानी ते लवी, भावे एक चम्मच पानी दी की औकात इतने वड्डे सागर दे चों। पर कीता की जाए, मनुख दी जिहड़ी औकात है एक चम्मच तो ज्यादा है भी नहीं। क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई, तो उस अकथ दी कथा उस सागर नू फिर कल चम्मच दे राही थोड़े सामने पेश करने की कोशिश करांगे। अज इत्थे समाप्ति थानू लेट ना करिए। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम है, वो एक करता है, वो एक पुरख है, और फिर उस एक दा स्वभाव की है, स्वरूप की है, जिहड़ी व्याख्या है तुच्छ बुद्धि अनुसार लड़ीवाल दास रोज शाम नू 8 to 9 थोड़े सामने रखिया करेगा। उम्मीद है आप इस तरह हाजरी भरते रहोगे। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। उल चुकदी शमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।